आज है 11 जनवरी दिन सोमवार। स्वागत है आपका नमस्कार भारत में। मैं हूँ सुशीला सिंह। दिल्ली सरकार की सम विषम योजना के भविष्य पर हाईकोर्ट आज लेगी फैसला।
कोर्ट ने 11 तारीख का समय लिया है। कोर्ट का जो फैसला आएगा उसके बाद आगे की कार्ययोजना उस संदर्भ में हम लोग निर्धारित करेंगे, लेकिन पहले भी हमारी जो कार्ययोजना थी न तो हम 15 के बाद इसको बढ़ाने जा रहे हैं और न तो 15 से पहले खत्म करने जा रहे हैं।
सीरिया के विदेश मंत्री आज पहुंचेंगे भारत।
इस विजिट में सबसे बड़ा फोकस आतंकवाद रहेगा और ये जनता अब हमारी केवल नहीं रहेगी बल्कि पश्चिमी देश भी इससे पीड़ित हैं। कई मिलियन रिफ्यूजी वहां पहुंच चुके हैं।
मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद जम्मू कश्मीर में अनिश्चितता जारी। कार्यक्रम में होगी समाचार पत्रों की समीक्षा, रुसतुल्लाह खान की डायरी भी, लेकिन पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार संदीप सोनी से। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए बीते 11 दिनों से जारी सम विषम फॉर्मूले पर दिल्ली सरकार आज अपना फैसला सुना सकता है। वहीं दिल्ली की तर्ज पर पड़ोसी हरियाणा राज्य के रोहतक शहर में आज से इसी तरह की पहल शुरू की जा रही है, लेकिन रोहतक में ये पाबंदी कारों के बजाय ऑटो रिक्शा पर लागू होगी। हांगकांग में किताब बेचने वाले 5 लोगों के लापता होने से नाराज हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। समझा जाता है कि इन लोगों को चीन ने अपनी हिरासत में लिया है। लापता हुए 5 लोग उस दुकान पर काम करते थे जहां चीन सरकार की आलोचना करने वाली किताबें मिलती हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि चीन हांगकांग की आज़ादी को कम करने की कोशिश कर रहा है। विरोध प्रदर्शन में शामिल एक व्यक्ति ने कहा, अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन की सरकार को हांगकांग के लोगों को ठोस वादा करने की जरूरत है कि वो हांगकांग के कानून के हिसाब से चलेंगे और एक देश दो प्रणाली नियम का पालन करेंगे। हांगकांग में एक प्रदर्शनकारी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। मैक्सिको में फुटबॉल खिलाड़ियों को ले जा रही एक बस पुल से नीचे गिर गई है। बस में सवार कम से कम 16 लोग मारे गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि दुर्घटना की वजह बस की अधिक रफ्तार और चालक का नियंत्रण खो देना हो सकती है। जर्मनी की पुलिस का कहना है कि नए साल के जश्न के मौके पर हुए हमले के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि 500 से अधिक लोगों ने हमले की शिकायतें दर्ज कराई हैं। इनमें से ज़्यादातर लोगों का कहना है कि उन पर यौन हमला किया गया था। जर्मनी के न्याय मंत्री हेइको मास का कहना है कि ये हमले सुनियोजित और समन्वित प्रतीत होते हैं। ज़्यादातर हमले प्रवासियों पर किए गए हैं। अरब लीग के विदेश मंत्रियों ने ईरान स्थित सऊदी अरब के दूतावास पर हालिया हमलों की निंदा की है। हमलों की निंदा का यह बयान सऊदी अरब और ईरान के बीच बढ़ते तनाव पर चर्चा के लिए काहिरा में बुलाई गई आपात बैठक में जारी किया गया। अरब लीग के विदेश मंत्रियों ने ईरान की आलोचना की और कहा कि ईरान सऊदी दूतावास को सुरक्षा देने में विफल हुआ। अरब लीग के अधिकतर देशों ने इस बयान के समर्थन में वोट दिया, लेकिन लेबनन ने इसका विरोध किया क्योंकि लेबनन में ईरान समर्थित हिजबुल्ला काफी प्रभावशाली हैं। मैक्सिको के ड्रग माफिया खोआकिन गुस्मान लोयरा से मुलाकात की वजह से हॉलीवुड अभिनेता सीन पेन को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। बीते साल अक्टूबर में हुई इस मुलाकात का ये मामला ऐसे समय सामने आया है जब खोआकिन गुस्मान को जेल से भागने के बाद दोबारा पकड़ा गया है। अमरीका में वन्यजीव अधिकारियों का कहना है कि आइडाहो राज्य में एक ऐसे पहाड़ी शेर को मारा गया है जिसके सिर पर पूरी तरह से विकसित दांत पाए गए हैं। आइडाहो राज्य के वन्यजीव विभाग का कहना है कि शेर के सिर पर दांत होना एक तरह का ट्यूमर हो सकता है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। राजधानी दिल्ली में इस साल की शुरुआत यानी 1 जनवरी से शुरू हुई सम विषम योजना के भविष्य पर आज हाईकोर्ट फैसला ले सकती है। वहीं इस योजना को लागू करने वाली दिल्ली सरकार का दावा है कि इस योजना को लागू करने के बाद से दिल्ली में वायु प्रदूषण में कमी आई है। दिल्ली सरकार की तरफ से वकील हरीश सालवे अदालत में दलील रख चुके हैं कि दिल्ली की वायु में बढ़ते प्रदूषण ने एक आपात स्थिति पैदा कर दी थी, इसलिए कदम उठाना बेहद जरूरी था। वहीं दिल्ली के बाद आज से हरियाणा के रोहतक जिले में भी ऑड इवन फार्मूला लागू होगा। हालांकि रोहतक में सम विषम या ऑड इवन के तहत पाबंदी सिर्फ ऑटो रिक्शा पर होगी और वो भी सप्ताह में सिर्फ एक दिन। एक रिपोर्ट के साथ निखिल रंजन।
नए साल में भारत की राजधानी की सड़कों पर लागू की गई दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी ऑड इवन योजना का भविष्य आज तय होगा। दिल्ली हाईकोर्ट इसे लेकर अपना फैसला सुनाएगी। हाईकोर्ट ने इस योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बीते शुक्रवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी को ये योजना लागू की थी। इसमें विषम तारीख वाले दिन विषम नंबर के चौपहिया वाहनों को सड़कों पर उतरने की इजाज़त होती है और सम तारीख वाले दिन सम नंबर के वाहन सड़क पर चलते हैं। गाड़ियों पर पाबंदी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक होती है। दिल्ली सरकार ने इसे 15 जनवरी तक जारी रखने का ऐलान किया है। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय,
EPCA ने जो आंकड़े अभी तक और जो ट्रेंड पिछले 7 दिनों में दर्ज किए थे, हमने कोर्ट के सामने उसको भी प्रस्तुत किया था। तो अभी कोर्ट ने 11 तारीख का समय लिया है। कोर्ट का जो फैसला आएगा उसके बाद आगे की कार्ययोजना उस संदर्भ में हम लोग निर्धारित करेंगे। लेकिन पहले भी हमारी जो कार्ययोजना थी, न तो हम 15 के बाद इसको बढ़ाने जा रहे हैं और न तो 15 से पहले खत्म करने जा रहे हैं।
दिल्ली सरकार अब तक मिले नतीजों से खुश है और इस योजना को कामयाब बता रही है। वहीं दिल्ली से सटे राज्य हरियाणा के रोहतक जिले में भी आज से ऑड इवन का प्रयोग शुरू हो रहा है। रोहतक में ये योजना सिर्फ 1 दिन लागू होगी और इस दौरान सिर्फ ऑटो रिक्शा के सड़क पर उतरने पर पाबंदी लगाई जाएगी। रोहतक के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशांक आनंद ने बताया,
रोहतक शहर में लगभग 11,000 ऑटो रिक्शा फ्लाई करते हैं। आम नागरिक की बहुत सी शिकायतें आती हैं कि ऑटो रिक्शा की वजह से सारा टाइम शहर में कंजेशन रहता है। तो ये ऑटो यूनियन के साथ हमने बातचीत करी और ये तय किया, हमारा हफ्ते का सबसे बिजी दिन होता है ट्रैफिक सोमवार का दिन, उस दिन हम आधे ऑटोज को चलाएंगे ऑड इवन के सिस्टम के मुताबिक।
रोहतक में ये योजना 10 साल पहले भी लागू हुई थी, लेकिन तब ये प्रयोग कामयाब नहीं हो सका। हालांकि दिल्ली के उलट रोहतक में इस योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य प्रदूषण घटाना नहीं बल्कि लोगों को जाम की समस्या से निजात दिलाना है। शशांक आनंद कहते हैं,
हमारा मुख्य उद्देश्य तो जाम से पाने का है, लेकिन प्रदूषण भी इससे एक जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो अगर उसमें भी हमें कुछ फायदा होता है तो बहुत अच्छी बात है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आनंद के मुताबिक आज से रोहतक में प्रयोग के तौर पर लागू की जा रही योजना कामयाब रही तो इसे बाकी वाहनों पर भी लागू किया जा सकता है, पाबंदी के दिनों को भी बढ़ाया जा सकता है।
दिल्ली सरकार की सम विषम योजना पर हाईकोर्ट आज ले सकती है फैसला। ये थे निखिल रंजन। सीरिया के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री वालिद अल मुअम्मल आज से भारत दौरे पर आ रहे हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान वे विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। सीरिया के विदेश मंत्री की यात्रा एक ऐसे वक्त में हो रही है जब उनका देश संकट के दौर से गुजर रहा है और उसका हल तलाशने के लिए अमरीका, रूस और यूरोप के कई देश जुटे हैं। सीरिया के विदेश मंत्री की यात्रा को लेकर हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने मध्य पूर्व मामलों के विशेषज्ञ कमर आगा से बात की और सबसे पहले पूछा कि सीरिया के विदेश मंत्री की यात्रा की क्या अहमियत है और वो किस उद्देश्य से भारत आ रहे हैं।
भारत के सीरिया से बहुत पुराने संबंध है और हमेशा भारत इस बात पे इच्छुक रहा है कि वहाँ शांतिपूर्वक तरीके से इस मसले का हल निकला है। भारत का मानना है कि मिलिट्री सॉल्यूशंस का है नहीं, ये बातचीत के ही जरिए हल हो सकता है और वो भारत जिनीवा वन को भी सपोर्ट करता है और दोबारा से भी चाहता है कि सभी पार्टीज बातचीत पे आएं। और मिलिटेंसी दूसरी चीज है, उससे आतंकवाद से भारत भी पीड़ित है और भारत चाहता है कि आतंकवाद का वहां पे उस पर अंकुश लगना चाहिए। तो ये चीजें हैं, हमारा कॉमन इंटरेस्ट है। सीरिया एक ऐसा मुल्क है, अकेला उस पूरे क्षेत्र में सेकुलर है, तो भारत की सपोर्ट भी उसको हमेशा मिलती रही है टाइम टू टाइम।
हाल में ही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के दौरे पर गए थे जहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उनकी बातचीत हुई, सीरिया संकट को लेकर भी और IS को लेकर भी। और इसके बाद सीरिया के उप प्रधानमंत्री जो विदेश मंत्री भी हैं उनका भारत आना, क्या इन सबको आपको जोड़कर देखते हैं?
नहीं, हमें रूस की जरूरत नहीं है सीरिया से डील करने के लिए, इसलिए कि हमारे संबंध सीधे उनके साथ हैं और बहुत पुराने संबंध हैं। आजादी के बाद से लगातार 50 के दशक से लगातार संबंध चल रहे हैं। हाँ, इंडिया और रशिया दोनों के स्टैंड में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। भारतवर्ष जो है वो रशिया के जो मिलिट्री इंटरवेंशन है उसको अपोज नहीं करता, उसका मानना यह है कि आतंकवाद को कम करने की कोशिश एक है, तो काफी हमारा इंटरेस्ट उनके साथ एक तरह से कहा जा सकता है कि मिलता है।
जिस तरह से पूरी दुनिया में इस वक्त IS के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंता है, क्या भारत और सीरिया के बीच में जो बातचीत अगले कुछ दिनों में होगी फोकस IS के ऊपर रहेगा?
बिल्कुल, देखिए इस विजिट में सबसे बड़ा फोकस आतंकवाद रहेगा। भारत में यह हर की चिंता है कि किसी भी सूरत से आतंकवाद में अंकुश लगना चाहिए, और ये चिंता अब हमारी केवल नहीं रह गई बल्कि पश्चिमी देश भी इससे पीड़ित हैं। कई मिलियन रिफ्यूजी वहां पहुंच चुके हैं और कंडीशंस बहुत खराब होती चली जा रही हैं। सभी पीड़ित हैं इस क्षेत्र में। हम तो बहुत सालों से भारत इससे पीड़ित रहा है और उसका बड़े बेटर एक्सपीरियंस है, लेकिन कंसिस्टेंटली भारत लड़ता रहा है इस आतंकवाद के खिलाफ। लेकिन हमारे थोड़े से डिफरेंस हो जाते हैं, डिफरेंस यहाँ पे आ जाते हैं। हम लोग का मानना ये है, यहाँ पे भारत के अंदर अधिकतर पॉलिटिकल पार्टीज और गवर्नमेंट में भी ज्यादातर जो लोग हैं उनका मानना ये है कि इस समय जो गवर्नमेंट है सीरिया में वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है और इसकी मदद से आतंकवाद को रोकने में मदद मिलेगी। अगर ये गवर्नमेंट हटती है तो आतंकवाद और बढ़ेगा, आर्मी भी टूट जाएगी, आर्मी का एक कमिटमेंट है आतंकवाद के खिलाफ। तो मैं समझता हूँ कि इस बातचीत में सीरिया के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर हैं वो एक बार दोबारा से सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करेंगे ताकि जिनेवा में वो बने रहें, कोई ऐसा मॉडल निकल के आए जिसमें सीरिया की गवर्नमेंट ही के जरिए इलेक्शन और इंटरिम गवर्नमेंट बने और फिर उसके बाद एक इलेक्शन का प्रोसेस चले। कुछ देश ऐसा मानते हैं कि सीरिया की गवर्नमेंट पहले जाए उसके बाद तुरंत एक गवर्नमेंट का गठन हो जाए, वो संभव हम लोग को नजर नहीं आता।
मध्य पूर्व मामलों के जानकार कमर आगा से बात कर रहे थे वात्सल्य राय।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और पीडीपी के नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद राज्य में राजनीतिक अनिश्चितता की स्थिति बन गई है। हालांकि पीडीपी ने उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती को विधायक दल का नेता चुन लिया है, लेकिन उन्होंने अभी तक मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ नहीं ली है। शपथ की तारीख भी अभी तय नहीं है। इस बीच कल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने महबूबा से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद राजनीतिक तौर पर नए समीकरण बनने की अटकलों को बल मिला। वहीं महबूबा से भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी मुलाकात की, लेकिन राज्य की नई सरकार को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं हुई है। फिलहाल राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है। ज्यादा जानकारी के साथ श्रीनगर से रियाज मसरूर।
भारत प्रशासित कश्मीर में इस वक्त एक राजनीतिक अस्थिरता पाई जाती है, क्योंकि मुफ्ती मोहम्मद सईद जो मुख्यमंत्री थे उनका अचानक निधन हो गया और महबूबा मुफ्ती अभी भी सोच रही हैं कि उन्हें शपथ लेना चाहिए बीजेपी के साथ अलायंस में या नहीं।
कल देर रात तक जो महबूबा मुफ्ती की ऑफिशियल रेजिडेंस है वहां पे उनकी लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग होती रही। एजेंडा यही था कि किस तरह से बीजेपी के साथ आगे चला जाए। इस बीच कल ही सोनिया गांधी भी पधारी थी के लिए उनके घर, उनसे मिली भी और काफी रीच आउट कर रही है कांग्रेस भी पीडीपी की तरफ, लेकिन सब नेता जो कांग्रेस के हैं वो कह रहे हैं कि भाई ये सिर्फ ताजियत के लिए आ रहे हैं, कंडोलेंस के लिए, इसमें कोई सियासत नहीं है। इस बीच गुलाम नबी आजाद जो कि कांग्रेस के मुख्य नेता हैं उन्होंने भी कहा कि भाई हम सिर्फ कंडोलेंस कर रहे हैं क्योंकि मुफ्ती साहब उनके कलीग रहे हैं, कांग्रेस में रहे हैं, किसी तरह का कोई इशारा नहीं दिया। गुलाम नबी आजाद ने हालांकि मीडिया से भी बात
की।
गुलाम नबी आजाद के बाद फिर नितिन गडकरी साहब भी आए थे तो उन्होंने भी हालांकि ये कहा कि उनका दौरा जो है कोई राजनीतिक नहीं है, वो सिर्फ कंडोलेंस के लिए आए थे। उन्होंने भी हालांकि मीडिया से बात
की। जो एक्सपेक्टेशन उनके भारत सरकार की ओर से थे वो निश्चित रूप से हम पूरी करेंगे, ये विश्वास मैंने उनको दिया। राजनीतिक चर्चा करने का दिन आज का नहीं है, मैं राजनीतिक चर्चा करने के लिए आया हूं।
लेकिन इसमें जो एक अनसर्टेनिटी पाई जाती है क्योंकि महबूबा मुफ्ती के बारे में ये कहा जाता है कि उनको आफ्टर थॉट्स आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर उनकी एक पॉलिटिकल छवि जो है पूरे राज्य में उसको लेकर अपोजिशन, नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरे लोगों ने काफी उछाला है। उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी की कश्मीर में जो एंट्री है वो मुफ्ती मोहम्मद सईद की वजह से हुई है। अब महबूबा मुफ्ती चाहती हैं कि वो एक नई राजनीति को जन्म दें यहाँ से। उनके बहुत बड़े नेता हैं पीडीपी के और फाउंडर भी हैं मुजफ्फर बेग, उन्होंने एक बयान दिया है कि महबूबा मुफ्ती से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो एक फ्रेश स्टार्ट लेंगी। हालांकि एक वेग बयान है लेकिन फ्रेश स्टार्ट का मतलब है कि जिस तरह से उनको प्रॉब्लम हुआ है बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर, उस प्रॉब्लम को पीछे छोड़ के एक नया स्टार्ट लिया जाएगा। तो इस तरह से एक पूरी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। असेंबली में उनके 28 विधायक हैं और 28 में से जो 3 विधायक हैं, वित्त मंत्री हैं राज्य के हसीब द्राबू और शिक्षा मंत्री हैं नईम अख्तर और जो पब्लिक वर्क्स मिनिस्टर हैं अल्ताफ बुखारी, उनको छोड़ के बाकी सभी जो मिनिस्टर्स हैं उनके या नेता हैं वो लोग कह रहे हैं कि आपको नए सिरे से सोचने की जरूरत है। तो इस तरह से महबूबा मुफ्ती ने ये इशारा दिया है कि अगले चंद रोज में ये संभव नहीं है कि वो शपथ लेंगी, क्योंकि राज्य में गवर्नर राज है, राष्ट्रपति के द्वारा एक कंसेंट मिली है गवर्नर को कि जी आप ही लेजिटिमेट एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। ठीक है, तो इस बात ये बड़ी अहम है कि 18 तारीख से पहले से तय है कि विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 18 से पहले किसी न किसी को चीफ मिनिस्टर का ओथ लेना होगा। विधानसभा की कुल 87 सीटें हैं, इसमें से पीडीपी के पास 28 सीटें हैं, बीजेपी के पास 25 सीटें हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो मेन अपोजिशन है उसके पास 15 सीटें हैं और कांग्रेस के पास 12 सीटें हैं, और उसके बाद जो 4 सीट्स बचती हैं वो इंडिपेंडेंट्स के पास हैं।
ये थे श्रीनगर से रियाज मसरूर। भारत में क्रिकेट के प्रेमी आपको लाखों की संख्या में मिल जाएंगे, उनमें से एक राज्य बिहार भी है, लेकिन फिलहाल तक तो बिहार के लोगों को क्रिकेट मैच देखने का लुत्फ ना मिल पा रहा है, ना ही यहाँ के क्रिकेट खिलाड़ी मैदान पर अपना जलवा दिखा पाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड या बीसीसीआई ना तो बिहार में कोई मैच का आयोजन कराती है और ना ही बिहार की कोई टीम बीसीसीआई के किसी टूर्नामेंट में हिस्सा ले पाती है। लेकिन अब जल्द ही बिहार क्रिकेट के लिए स्थिति बदलने की उम्मीद बंधी है। कैसे, जानिए पटना से मनीष शांडिल्य की इस रिपोर्ट में।
बिहार के क्रिकेट खिलाड़ियों को भी जल्द ही मैदान पर अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। शनिवार को बीसीसीआई के जनरल मैनेजर रत्नाकर शेट्टी पटना आए थे। पटना में उन्होंने इस पर मुहर लगा दी कि सूबे में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन यानी बीसीए ही बीसीसीआई का एसोसिएट मेंबर रहेगा। इसके साथ ही बरसों बाद बिहार में क्रिकेट शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है, जैसा कि बीसीए के सचिव रविशंकर प्रसाद सिंह बताते हैं।
असमंजस की स्थिति थी चुनाव के बाद, रत्नाकर शेट्टी जी ने ये क्लियर कर दिया कि बीसीए जो हमारा 2008 से यूनिट था वही हमारे यूनिट है और वही हमारा यहाँ पर बिहार में क्रिकेट कराएगा, हम लोग उसको सहयोग करेंगे।
दरअसल एसोसिएट मेंबर का दर्जा 2008 में ही बीसीए को मिल गया था। इस हैसियत से बीसीए की टीम ने कुछ सालों तक बीसीसीआई के टूर्नामेंट्स में भाग भी लिया, लेकिन फिर बीसीए के अधिकारियों के बीच पद को लेकर मामला अदालत में पहुंचा और फिर बिहार में क्रिकेट ठप हो गया था। साथ ही इस बीच राज्य में 3-3 संघ बीसीसीआई से मान्यता का दावा भी कर रहे थे। बीते साल अदालत की निगरानी में हुए चुनाव के बाद बीसीए में चल रहा खींचतान खत्म हुआ था और अब बीसीसीआई की मुहर के बाद बिहार की टीम अंडर 16, 19 और 22 क्रिकेट टूर्नामेंट्स में हिस्सा ले सकेगी। रत्नाकर शेट्टी की घोषणा के साथ ही एक बार फिर यह उम्मीद जगी है कि जल्द ही बिहार को भी बीसीसीआई की पूर्ण मान्यता वाले राज्य का दर्जा मिल जाएगा। बिहार के क्रिकेटर और युवा भारतीय टीम के पूर्व कप्तान अमिकर दयाल भी इसको लेकर आशान्वित हैं।
ये जहाँ तक बीसीसीआई ने कहा है कि 3 साल हमें असिस्टेंट नंबर की भूमिका में क्रिकेट खेलना पड़ेगा, लेकिन मेरा मानना है कि ऑलरेडी बिहार 2 साल एसोसिएट नंबर के टूर्नामेंट खेल चुका है 2010 और 2011 में, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बीसीसीआई के प्रेसिडेंट को एक स्पेशल पावर्स होता है कि अगर हम 1-2 साल में भी उस तरह की परफॉर्मेंस हमारी टीम दिखाए नेशनल लेवल पे और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का जो क्रिकेट का डेवलपमेंट है वो अच्छा हो, तो उनके पास डिस्ट्रीब्यूटिव पावर्स होता है कि वो हमें 3 साल में फुल मेंबरशिप दे सकते हैं। तो हमें देखना है, हमें पूरी उम्मीद भी है कि बीसीसीआई इस चीज पर जरूर ध्यान देगी क्योंकि बिहार कोई छोटा राज्य नहीं है।
शनिवार को बिहार सरकार के कला संस्कृति और युवा विभाग के मंत्री शिवचंद्र राम ने भी रत्नाकर शेट्टी के साथ बैठक की थी। इस दौरान उन्होंने सूबे में क्रिकेट की बेहतरी के लिए हर तरह की मदद का भरोसा दिलाया। ऐसे में सूबे के क्रिकेट खिलाड़ियों और इसके चाहने वालों के लिए अच्छे दिनों की आस एक बार फिर जगी है। मनीष शांडिल, बीबीसी पटना।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां,
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, सुशीला सिंह से, और अब समय है समाचार पत्रों की समीक्षा का। संदीप समाचार पत्रों के साथ स्टूडियो आ चुके हैं। समीर संदीप सोनी, माफ कीजिएगा।
सुशीला जी, विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने कहा है कि कांग्रेस नेता मनीष तिवारी के पास कोई काम नहीं है, इसलिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। किस तरह के बयान? मनीष तिवारी ने कहा है कि सेना 3 साल पहले दिल्ली कूच करने वाली थी और ये खबर सही थी। हालांकि मनीष तिवारी की जो अपनी पार्टी है कांग्रेस, उसने इस बयान को सिरे से खारिज कर दिया है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने इस बात पर सवाल उठाया है कि मनीष तिवारी को क्या सूझी जो उन्होंने ये बयान इस समय दिया। इंडियन एक्सप्रेस और तमाम अखबारों में ये खबर है। और ज़रा ये सोचिए कि आपको परीक्षा देना है और परीक्षा में कहा जाए कि ये लो किताब और ढूंढ लो अपने सवालों के जवाब, तो कैसा हो? दरअसल केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने केंद्रीय विद्यालयों और अन्य विद्यालयों से माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर की परीक्षाओं में ओपन बुक टेस्ट प्रणाली शुरू करने की दिशा में सोचने के लिए कहा है। ये खबर भी इंडियन एक्सप्रेस में है। अगला अखबार हिंदुस्तान टाइम्स। अखबार ने अपने पहले पन्ने पर खबर दी है सबसे ऊपर कि पंजाब के पठानकोट में वायुसेना अड्डे पर बीते दिनों चरमपंथी हमले के बाद भारतीय सेना के बेहतरीन सैनिकों को 9 अलग अलग दस्तों की शक्ल में जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर तैनात करके हाई अलर्ट पर रखा गया है। हिंदुस्तान टाइम्स में ही ये खबर है कि सोनिया गांधी ने श्रीनगर जाकर पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती से मुलाकात की। मुलाकात को यूं तो निजी बताया जा रहा है, लेकिन पीडीपी का कहना है कि महबूबा मुफ्ती को नया मुख्यमंत्री बनाने और सरकार के स्वरूप में बदलाव को लेकर अभी स्पष्टता नहीं है, इसलिए सोनिया गांधी और भाजपा नेता नितिन गडकरी के श्रीनगर जाने से राजनीतिक सुगबुगाहट तेज हो गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक के बाद एक दो खबरें हैं जो मेरा ध्यान खींच रही हैं। पहली खबर यह है कि मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यापम घोटाले के सिलसिले में सीबीआई ने एक चाय वाले को तलब किया है जो कानपुर में अपनी चाय की दुकान चलाता था। दूसरी खबर ये कि बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर लिखा है कि इंदिरा गांधी का शासन ब्रिटानी शासन से भी खराब था।
जी, समाचार पत्रों की समीक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संदीप सोनी आपका। और श्रोताओं, आज सोमवार है तो हमारी तरह आपको भी इंतजार होगा वसुतला खान की डायरी का, तो आइए सुनते हैं।
अमरजीत सिंह 2005 में भर्ती हुआ और 3 दिन पहले जब उसने पहली बार शाम का सूरज डूबते डूबते वाघा अटारी बॉर्डर पे गड़ा गेट जोर से बंद करके झंडा उतारा और बीएसएफ के एक जवान की आंखों में आंखें डाल के धम से जमीन पे एड़ियां बजाईं, तो सीमा के आर पार खड़े सैकड़ों तमाशाइयों ने जोर जोर से स्वागती तालियां बजाई। इस रस्म से पहले अमरजीत सिंह ने बीएसएफ के जवानों से भी हाथ मिलाया। अमरजीत का जन्म ननकाना साहब में हुआ। बचपन से सपना था कि फौज में जाए। अमरजीत पाकिस्तानी फौज में दाखिल होने वाला पहला सिख है। दुनिया के हर फौजी की तरह अमरजीत सिंह का भी एक ही जवाब है कि उसे अपनी सेना पे नाज है और वो वतन की आन पे जान कुर्बान करने के लिए हर दम तैयार। मुझे आज तक कोई ना बता सका कि वाघा अटारी बॉर्डर पे ये चलन कब से शुरू हुआ कि सुबह गेट तो शांत तरीके से बिगल की आवाज़ के साथ खुलेगा, मगर शाम को जब यही गेट बंद होगा तो 2 चौड़े सीने वाले जवान उस तरफ से और 2 कड़ियल जवान इस तरफ से एक दूसरे को ऐसे घूरते हुए गेट बंद करेंगे जैसे अब ये कभी नहीं खुलेगा। मगर इतनी घूरम घारी के बाद भी गेट हर सुबह खुलता है। इस गेट ने अब तक 2 बड़ी जंगें देखी हैं। ये कई बार बदला भी गया है। एड़ी बजाने वाले कई जवानों के घुटने भी नाकारा हुए। कई बार ये प्रस्ताव भी रखा गया कि सुबह और शाम की इस रस्म में से धरती को एड़ियों से हिलाने का जोखिम हटा दिया जाए ताकि जवानों की सेहत ठीक रहे और धरती माँ को भी थोड़ा आराम मिले, मगर फिर ये होश वाला प्रस्ताव जोश की एड़ियों तले दबके रह जाता है। मैं जब जब वाघा अटारी गेट पर झंडा चढ़ाने और उतारने का मंजर देखने जाता हूं तो एक वाकया हमेशा याद आ जाता है। हुआ यूं कि गोल्डन टेंपल से बाहर निकलते ही मैंने एक रक्षा चालक सरदार जी को हाथ दिया। उसने पूछा किथे, मैंने कहा लाहौर। सरदार ने कहा फौरन पीछे बैठ जाओ, अटारी का गेट बंद होने वाला है, तुम्हें लाहौर उतार के मैं अपना गुजरांवाला भी देख के वापस आ जाऊँगा। کل جب میں نے خبر پڑھی کہ پاکستانی رینجرز کا امرجیت سنگھ اب واگا بارڈر پہ ڈیوٹی دے رہا ہے تو یہ فضول سا خیال بھی من میں آیا کہ کل کلاں خدا نہ کرے جنگ ہو جاتی ہے اور امرجیت پاکستان کی طرف سے اور کرپال سنگھ بھارت کی طرف سے وطن کی آن بچانے کے لیے پرجا پرجا کٹ مرائی کبھو نہ چھڑائی کھیت کا گرنتی نعرہ لگاتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف دوڑ پڑے تو جیت کس کی ہوگی؟ جو بولے سو نحال کی یا ست سری اکال کی؟
آپ وسط اللہ خان کی یہ ڈائری بی بی سی ہندی ڈاٹ کام پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور آج کن خبروں پر رہے گی ہماری نظر، جان لیتے ہیں سندیپ سونی سے۔
پنجاب کے پٹھان کوٹ میں بھارتی وایو سینا ٹھکانے پر چرم پنتھی حملے سے پہلے کتھت روپ سے اغوا کیے گئے گرداس پور کے پولیس ادھیکشک سلویندر سنگھ کو راشٹریہ جانچ ایجنسی این آئی اے نے پوچھ تاچھ کے لیے دلی طلب کیا ہے، جہاں ان کا لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ بھی کرایا جا سکتا ہے۔ دلی میں کس دن کس نمبر کی گاڑیاں چلیں گی، اس بارے میں عام آدمی پارٹی سرکار کا آڈ ایون فارمولا جاری رہے گا یا نہیں، دلی ہائی کورٹ آج اس پر فیصلہ سنا سکتا ہے۔ یوروپ سے لوٹنے کے ایک دن بعد کانگریس اپادھیکش راہل گاندھی آج پارٹی نیتاؤں کے ساتھ بیٹھک کریں گے اور اپنی غیر حاضری میں ہوئے گھٹنا کرم پر چرچا کریں گے۔ سیریا کے اپ پردھان منتری اور ودیش منتری والد المعلم چار دن کی بھارت یاترا پر آج دلی پہنچ رہے ہیں۔ ان کی بھارت یاترا ایسے سمے ہو رہی ہے جب امریکہ سمیت وشو کی پرمکھ طاقتیں سیریا میں جاری سنکٹ ختم کرنے کے لیے سنواد پر زور دے رہی ہیں۔
تو سندیپ سونی بتا رہے تھے آج کن خبروں پر رہے گی ہماری نظر، اور آپ سن لیتے ہیں کھیل سماچار۔
کھیل سماچاروں کے ساتھ میں ہوں آدیش کمار گپت۔ شیرش وریتا حاصل سوئٹزرلینڈ کے روجر فیڈرر نے اپنا دمخم دکھاتے ہوئے کل برسبین انٹرنیشنل ٹینس ٹورنامنٹ اپنے نام کیا۔ پروش ایکل ورگ کے فائنل میں انہوں نے آسٹریا کے ڈومینک تھیم کو آسانی سے 6-1 6-4 سے مات دی۔ وہیں چینئی اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کا فائنل کل شیرش وریتا حاصل سوئٹزرلینڈ کے اسٹین واورنکا نے جیتا۔ یہ چینئی اوپن میں ان کی لگاتار تیسری خطابی جیت ہے۔
And now, ladies and gentlemen, I think we've seen this before, but it's happening again for the third time running. My honor and privilege to call upon the winner of the 2016 Chennai Open, our man, Stan Wawrinka.
فائنل میں انہوں نے کروئیشیا کے بورنا کورک کو 6-3 7-5 سے ہرایا، جبکہ پروش یگل ورگ کا فائنل تیسری وریتا حاصل جوڑی آسٹریا کے اولیور مہاراچ اور فرانس کے فیبریس مارٹن نے اپنے نام کیا۔ فائنل میں جوڑی نے امریکہ کے آسٹن کرائزک اور فرانس کے بینوئٹ پیرے کو 6-3 7-5 سے ہرایا۔ ادھر بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ کل 5 ایک دیوسیہ انتراشٹریہ کرکٹ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ پرتھ میں کھیلا جائے گا۔ کرکٹ سمیکشک پردیپ میگزین مانتے ہیں کہ بھارت کو اس بار جیتنا چاہیے۔
دیکھیے، سیریز کو مجھے نہیں لگتا ہم کو اتنا سیریسلی لینا چاہیے۔ ایک ایکسپیریمنٹ دیکھیے، آپ آسٹریلیا نے اپنے سارے پیس بالرز ریسٹ کرائے، ایک نئی ٹائپ کی ٹیم کھڑی کی ہے۔ انڈیا حالانکہ کیونکہ ان کا ان ایکسپیرینس بالنگ اٹیک ہے تو امید کی جانی چاہیے کہ وہ ون ڈے سیریز جیت جائے، حالانکہ آسٹریلیا میں سیریز اتنا آسان نہیں ہے۔
دیکھنی ہے کہ پچھلے دورے پر بھارت آسٹریلیا میں ایک بھی میچ نہیں جیتا تھا۔ وہیں میزبان نیوزی لینڈ نے آکلینڈ میں کھیلے گئے دوسرے 2020 انتراشٹریہ کرکٹ میچ میں کل سری لنکا کو 9 وکٹ سے کراری بات دی۔ نیوزی لینڈ کے سامنے جیت کے لیے 143 رنوں کا لکشیہ تھا، جو اس نے سلامی بلے باز مارٹن گپٹل کے 63 اور کپتان کین ولیمسن کے ناباد 32 تتھا کولن منرو کے ناباد 50 رن کی مدد سے کیول 10 اوور میں ہی 1 وکٹ کھو کر حاصل کر لیا۔ اس جیت کے ساتھ ہی نیوزی لینڈ نے 2 میچوں کی یہ سیریز 2-0 سے اپنے نام کی۔
کھیل سماچار سنا رہے تھے آدیش کمار گپت۔ اور اب کارکرم کا انت کرنے سے پہلے سن لیتے ہیں مکھیہ سماچار۔
بی بی سی سماچار۔ راجدھانی دلی میں پردوشن روکنے کے لیے بیتے 11 دنوں سے جاری سم وشم فارمولے پر دلی ہائی کورٹ آج اپنا فیصلہ سنا سکتا ہے۔ ہانگ کانگ میں کتاب بیچنے والے 5 لوگوں کے لاپتہ ہونے سے ناراض ہزاروں لوگوں نے ویروتھ کیا ہے، ویروتھ پردرشن کیا ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو چین نے اپنی حراست میں لیا ہے۔ मैक्सिको में फुटबॉल खिलाड़ियों को ले जा रही एक बस पुल से नीचे गिर गई है। बस में सवार कम से कम 16 लोग मारे गए हैं। जर्मनी की पुलिस का कहना है कि नए साल के जश्न के मौके पर हुए हमले के मामले बढ़ते जा रहे हैं। 500 से अधिक लोगों ने हमले की शिकायतें दर्ज कराई हैं। अरब लीग के विदेश मंत्रियों ने ईरान स्थित सऊदी अरब के दूतावास पर हालिया हमलों की निंदा की है। हमलों की निंदा का यह बयान सऊदी अरब और ईरान के बीच बढ़ते तनाव पर चर्चा के लिए काहिरा में बुलाई गई आपात बैठक में जारी किया गया। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रहे थे संदीप सोनी। इसी के साथ नमस्कार भारत में बस इतना ही। आपसे 8 बजे विश्व भारती में फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाज़त।